हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए, और वो सख्त आवाज में बोली, सिद्धार्थ फोन स्पीकर पर डालो, मुझे अभी झलक से बात करनी है। अब जैसे ही दादी ने बोला, सिद्धार्थ ने फोन स्पीकर पर कर दिया था। तब दादी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, झलक कैसी हो बेटा? तब झलक जल्दी से बोली, दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब झलक ने तिरछी नजरों से सिद्धार्थ की ओर देखा था। उसके चेहरे पर उसके लिए नफरत उसे साफ दिखाई दे रही थी। जैसे तैसे उसके कानों में एक बार फिर दादी की आवाज सुनाई दी। दादी उसे कह रही थी, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अब दादी के इतने प्यार से बात करने पर झलक खुद को रोक नहीं पाई, और अचानक उसने झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई थी। फटाफट से उसे साइड में रखकर झलक जोरों से रोने लगी थी और सहमते हुए कांपती आवाज में बोलती है, आपको पता है दादी, ये आपका पोता सिद्धार्थ खुराना मुझे अस्पताल में लेकर जाना चाहता है और मेरा गर्भाशय निकलवाना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जैसे ही सीधे सीधे उसी के मुंह पर झलक ने सिद्धार्थ की शिकायत दादी से किया। अब तो सिद्धार्थ का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया था, और वो सोचने लगा कि ये लड़की कितनी ज्यादा एक्टिंग करती है। अभी फिलहाल क्योंकि दादी फोन पर थी तो सिद्धार्थ उसे कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली थी। उसकी कोल्ड आंखें और भी गहरी होती चली गई थी, और वो नाखुश होकर मन ही मन में सोच रहा था, अगर दादी इस जिंदा रखने की इजाज़त के लिए नहीं बोलती तो मैं ना जाने इसके कितने टुकड़े कर चुका होता। तभी दादी झलक की बात सुनकर बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत रो, मैंने उसे डांट दिया है, वो कभी भी अब तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, प्लीज़ तुम में शांत हो जाओ। तुम मुझ पर तो यकीन करती हो ना? तब झलक थोड़ा शांत हुई और बोलती है, जी हाँ दादी, मैं सिर्फ आप पर यकीन करती हूँ, लेकिन आपके पोते ने मेरा फोन भी ले लिया है। तब दादी बोली, बेटा वो शापित बच्चा है, शुरू से अकेला रहा है, उसे नहीं पता कि औरतों के साथ और लड़कियों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। हालांकि दादी ने सिर्फ झलक के साथ केवल 3 दिन बिताए थे, लेकिन 3 दिनों में वो झलक को अच्छी तरह से पहचान गई थी कि झलक कितने ज्यादा प्यारी और अच्छी बच्ची है, और कितनी ज्यादा मेहनती और बुद्धिमान है। बस सिर्फ और सिर्फ उसमें एक कमी थी, उसकी काफी ज्यादा सिंपल थी, और साथ ही साथ उसकी काफी हद तक बदसूरत शक्ल थी। लेकिन फिर भी दादी माँ को लगता था कि झलक घर संभालने वाली सबसे अच्छी लड़की साबित हो सकती है। लेकिन दादी माँ कहीं ना कहीं ये बात भी जानती थी कि शायद अपनी बदसूरत शक्ल के साथ वो कभी भी सिद्धार्थ खुराना का दिल नहीं जीत सकती है। तब दादी माँ कुछ सोचते झलक को संतावना देते हुए बोली, अच्छा बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अभी के लिए तुम सिद्धार्थ को फोन दे दो। तब जल्दी ही झलक ने सिद्धार्थ की ओर फोन बढ़ा दिया था। तब सिद्धार्थ ने फोन का स्पीकर बंद कर दिया और अपने और फोन कान पर लगाने के बाद बोला, जी दादी। तब उर्वशी जी सिद्धार्थ पर गुस्सा होते हुए आग बबूला होकर बोली, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी दादी हूँ? क्या तुम सच में अपनी दादी का मान सम्मान कुछ करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के गर्भाशय निकलवाने की? तुम इंसानी हो या शैतान हो? तुम्हें तो सीधा नरक में बीच में जगह नहीं मिलेगी। फोन के दूसरे तरफ दादी बेहद गुस्से में थी, और तब दादी एक बार फिर भड़कते हुए बोली, अभी और इसी वक्त झलक का फोन उसे वापस दो, और हर रोज मैं उसे वीडियो कॉल करूंगी। अगर उसका एक भी बाल बांका हुआ तो तुम तैयार रहना मेरी लाश को दफनाने के लिए। इतना बोलकर जल्दी ही दादी ने फोन कट कर दिया था, और सिद्धार्थ के कानों में फोन बंद होने के यानी बीप 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 की आवाजें आने लगी थी। इतना बोलकर जल्दी ही दादी ने फोन कट कर दिया था और सिद्धार्थ के कानों में फोन बंद होने के यानी बीप 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 की आवाजें आने लगी। अब जैसे ही दादी माँ ने फोन रखा, सिद्धार्थ ने जो अपना फोन अपने कान पर लगा रखा था, अचानक उसने अपने फोन पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर लिए थे, और उसके हाथों में ही वो फोन चकनाचूर हो चुका था, लेकिन उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। अब तो झलक को उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि कोई तूफान आने वाला हो रही है, तूफान से पहले के खामोशी हो। वेल झलक बड़ी ही ध्यान से सिद्धार्थ की ओर देख रही थी और वो समझ चुकी थी कि जरूरत दादी माँ ने सिद्धार्थ को वार्निंग दिया और उसे कहा होगा आप दोबारा झलक परेशान ना करें। वेल ये सोचकर कहीं ना कहीं झलक ने मन ही मन में राहत की सांस ली थी और दादी माँ का ढेर सारा शुक्रिया अदा किया कि दादी माँ की वजह से कम आज उसका गर्भाशय तो बच गया। तभी सिद्धार्थ की आवाज़ आई। फिर सिद्धार्थ ने देव से कहा इसका फ़ोन इस लड़की को वापस दे दो। जल्दी ही देव ने झलक का फ़ोन उसे वापस दे दिया था। साथ ही साथ देव काफ़ी हद तक झलक को लेकर हैरान हो रहा था कि ये लड़की कितनी ज़्यादा तेज़ निकली, उसने कितनी चालाकी से बॉस से वो काम करवाया जो वो करना नहीं चाहते थे। पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई काम सिद्धार्थ खुराना की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था। वेल अब फ़ोन लेने के बाद झलक ने देव से थैंक यू बोला और तभी जैसे ही फ़ोन उसके हाथ में आया उसने देखा कि दादी माँ का एक बार फिर से झलक के फ़ोन कॉल आ रहा था। तिरछी नज़रों से सिद्धार्थ खुराना भी फ़ोन की स्क्रीन पर दादी माँ का नाम फ्लैश होते हुए देख चुका था। वेल दादी का नाम देखकर जल्द ही झलक ने फ़ोन उठा लिया था, एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा किया। तब दादी ने उसके हालचाल पूछे और उससे कहा कि अगर उसे कभी भी कोई भी ज़रूरी काम हो तो सीधा सीधा वो उन्हें कॉल कर सकती है। जब झलक ने एक बार फिर ढेर सारा उन्हें थैंक यू बोलकर खुशी से फ़ोन रख दिया था, फ़ोन रखते ही झलक ने देव से बोला कार रोको, मुझे यहीं उतरना है। अब जैसे ही झलक ने ये कहा सिद्धार्थ खुराना ने उसे कोल्ड आइस से देखा और अचानक उसने थोड़ा सा उसके पास जाकर उसकी ठुड्डी को एक बार फिर कसकर पकड़ लिया था और अपना मुंह उसके करीब ले जाकर बोला तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से मजबूर कर दोगी? हाँ, मेरी दादी का इस्तेमाल करके। हाँ, और तुम जो चाहती हो तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब ये कहते हुए सिद्धार्थ की पकड़ झलक के मुँह पर काफ़ी ज़्यादा कस गई थी। तब झलक ने गुस्से से उसके हाथ को अपने मुंह पर से हटा दिया था और जोर से चीखते हुए बोली नहीं, और उसने सिद्धार्थ का हाथ दूर धकेल दिया और उसकी ओर देखकर भड़कते हुए बोली देखो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, समझे तुम? भले ही तुम कितने ज्यादा हैंडसम, डैशिंग और अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? तो तुम अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठा लो और अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दो कि हर एक लड़की तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी, और ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दादी ने आपको ड्रग्स दिए थे और मैं वहाँ गलती से आई थी, इसलिए जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा किसी तरह का कोई रोल नहीं था। और फिर मुझे पता है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं प्रेग्नेंट ना रहूं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी तुम्हारे जैसे इंसान का बच्चा नहीं चाहती हूं। और 2 महीने बाद जब मैं चेकअप के लिए अस्पताल जाऊंगी तो आप चाहें तो आप अपने इस असिस्टेंट इस चपड़ गंजू को भी मेरे साथ भेज सकते हैं। झलक ने देव को निकनेम चपड़ गंजू दिया था। वही देव तो अब झलक के मुँह से अपने लिए चपड़ गंजू सुनकर चौंक गया था।
झलक की ओर देखने लगा था और सोच रहा था कि बस एक बार ये 2 महीने गुजर जाएं, उसके बाद उसे पता था कि उसका बॉस इस झलक के जान ही ले लेगा।